أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین، ہم رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ آگے چلا رہے تھے اور آداب معاشرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ رمضان المبارک میں کون سے آداب ایسے ہیں جو سیکھنے چاہیے اور رمضان المبارک کن آداب کو سکھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمیں تیار رہنے کا حکم دیتا ہے، روزے کی کیفیت ہے، اس میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم بہتر طور پر اس معاشرے میں رہتے ہوئے، انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے اڈاپٹ کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم ایک بہتر انسان بن سکیں، کامل مؤمن اور صاحب ایمان بن سکیں، ایک اچھا مسلمان بن سکیں. اوصاف اور آداب عباد الرحمن کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں بات ہو رہی تھی. قرآن کریم نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں کلی ہدایات دی ہیں. رسول کریم کی احادیث اور روایات میں بھی اس حوالے سے بہت کچھ ہمیں ملتا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ یا مؤمن ان ھذا العلم والادب فمن نفسك فاجتهد في تعلمها فما يزيد من علمك وادبك یزید فی ثمنک و قدرک. اے صاحب ایمان اور اے مسلمان، یہ علم اور یہ ادب تمہاری قیمت ہے. علم اور ادب تمہاری قیمت ہے، ثمن کہتے ہیں قیمت کو. لہذا جب تم اپنی عمر اور اپنی زندگی کے سیکنڈز، منٹس، گھنٹے، آورز، روز و شب، ہفتے، مہینے اور سال خرچ کرتے ہو، تو پھر اس خرچ کے مقابلے میں ان چیزوں کو حاصل بھی کرو، چونکہ یہ تمہاری قیمت ہے. تمہاری زندگی کا پل پل اس کے عوض صرف ہوتا ہے. اس لیے ایسا نہ ہو کہ تمہاری عمر کی قیمتی ترین متاع تمہارے ہاتھ سے جائے اور تم اس کے عوض میں، تم اس کے مقابلے میں کوئی چیز حاصل نہ کر سکو. فاجتہد فی تعلمہا، اس کے سیکھنے میں پوری کوشش کرو، پوری توجہ دو، تاکہ آداب سیکھ سکو اور علم حاصل کر سکو. طالب الادب احزم من طالب الذهب. اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا تمہارا ادب بڑھتا چلا جائے گا، جتنا تمہارا شعور بڑھتا چلا جائے گا اور جتنی تمہاری معرفت بڑھتی چلی جائے گی، تمہاری قیمت بڑھتی چلی جائے گی. اور تمہاری قیمت کا دار و مدار تمہاری معرفت، تمہارے دانش، تمہارے علم اور تمہارے ادب پر ہے. آداب سیکھو. طالب الادب احزم من طالب الذهب. ادب کا طالب زیادہ دور اندیش ہوتا ہے سونے کے طالب کی نسبت. جو شخص زر کی تلاش میں ہوتا ہے، جو شخص پیسے کی تلاش میں ہوتا ہے، جو شخص مال کی تلاش میں ہوتا ہے، اس کی قیمت کم ہوتی ہے، وہ دور اندیش نہیں ہے. وہ بچوں کی طرح سا ہے جو کسی کھلونے کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں، جب کھلونا ملتا ہے تو اس سے کھیلتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، اس کے بعد نئے کھلونے کی تلاش جاری رکھتے ہیں. دور اندیش انسان مال کے پیچھے نہیں جاتا، دور اندیش انسان ادب کے پیچھے جاتا ہے، علم کے پیچھے جاتا ہے، معرفت کے پیچھے جاتا ہے، آداب کے حصول کے پیچھے جاتا ہے. آپ سوچیے گا اس بات پر کہ آج کا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، اس تعلیمی نظام اور ماضی کے تعلیمی نظام میں کتنا فرق ہے. ماضی میں ہمارے تعلیمی ادارے جب ایک طبیب پیدا کرتے تھے تو اس طبیب کے ساتھ وہ طبیب ایک معلم اخلاق بھی ہوتا تھا، एक वली भी होता था, एक फकीह भी होता था, एक इंजीनियर भी होता था, एक रियाजीदान भी होता था। हमारे तालीमी वो इदारे जहां पर इल्म देते थे, जहां पर मारिफत देते थे, वहीं पर अदब भी देते थे। उन्हें पैसे और जर का गुलाम नहीं बनाते थे वो इदारे, बल्कि उन्हें इंसान बनाते थे। अनबिया की आमद का मकसद इंसान को इंसान बनाना है, दौलत और जर का गुलाम नहीं। सोना चाहे जितना ज्यादा आप जमा कर लें, सोना बहरहाल एक धात है, एक धात। आप जवाहर, हीरे, लाल जवाहर, कोहनूर हीरा वगैरह 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 जितने भी जमा कर लें, बहरहाल ये पत्थर हैं। इंसान की कीमत उस पत्थर से बहुत ज्यादा है, इंसान की कीमत उस सोने से बहुत ज्यादा है। लिहाजा इंसान को उन चीजों पर अपने आप को फिदा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीजों को अपने आप पर फिदा करना चाहिए। आप देखिए, जब कोई शख्स मेहनत मजदूरी करता है तो उससे कुछ ना कुछ बचाता है, पैसे जमा करता है, लेकिन जब बीमार पड़ जाता है तो फिर जिस्म को बचाने के लिए, अमराज से निजात के लिए उसी पैसे को खर्च करता है। क्यों? जिस्म उसकी निगाह में पैसे से ज्यादा कीमती है, ऐसा है जी। लेकिन रूह की कीमत जिस्म की नस्बत बहुत ज्यादा है। रूह को बचाने के लिए आदमी जिस्म को कुर्बान करता है। अगर कोई शख्स आपकी नामूस पर हमलावर हो तो आप क्या करते हैं? जान की कुर्बानी देते हैं नामूस बचाने के लिए या नहीं? बदन को कुर्बान करते हैं नामूस बचाने के लिए या नहीं? अपनी गैरत की हिफाजत के लिए अपना घर बार लुटाने पर तैयार हो जाते हैं या नहीं? इसका मतलब है जिन चीजों का ताल्लुक मानवियात से है, जिन चीजों का ताल्लुक रूहानियात से है, जिन चीजों का ताल्लुक नजरियात से है, जिन चीजों का ताल्लुक बातनियात से है, उनकी कदर कीमत जाहिरी और जिस्मानी चीजों से, मादी चीजों से बेइंतहा ज्यादा है। और इंसान का शऊर जितना बुलंद होगा, उसकी तशखीस भी उसी हिसाब से बुलंद होगी, उसका मतलूब भी उसी हिसाब से बुलंद होगा, उसकी तलब भी उसी हिसाब से बुलंद होगी। लिहाजा सोने का तालिब कहां और इल्म व हिकमत का तालिब कहां, आदाब का तालिब कहां और जर और पैसे का तालिब कहां, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। आप खुद सोचिए, आपके अपने माशरे के अंदर एक बहुत बड़ा साहिब जर, साहिब जायदाद, सरमायदार मौजूद हो और दूसरी तरफ एक इंतहाई पाकीजा शख्सियत मौजूद हो जिसके पास एक टाइम का खाना भी। लोग दिल से एहतराम किसका करते हैं, साहिब जर का या उस मानवी और रूहानी शख्सियत का? यकीनन रूहानियत, मानवियत, बातनियत, नजरिया, ये चीजें बहुत ज्यादा काबिल कदर और बहुत ज्यादा कीमती हैं। किसके मुकाबले में? जर के मुकाबले में, सोने के मुकाबले में, जमीन के मुकाबले में, जायदाद के मुकाबले में, सरमाए के मुकाबले में, कारखानों के मुकाबले में, इख्तदार के मुकाबले में। लिहाजा नबी करीम की यह हदीस आपने सुनी, तालिबुल अदब अहजमु मिन तालिब ज़हब, ज्यादा दूरंदेश है तालिब अदब उसकी नस्बत जो तालिब ज़हब है, सोने का तालिब है। अल अदबु हुललुन जुदुद, अदब इंसान के लिए एक नया लिबास है। नया लिबास इंसान को जीनत अदा करता है, नया लिबास इंसान को खूबसूरती अदा करता है। इंसान अगर बरहना हो तो बदनुमा है, खुशपोश हो तो वो खूबसूरत लगता है। अदब इंसान के उयूब को छुपाने का बेहतरीन जरिया है। इसलिए फरमाया कि ये जो अदब है ये नया लिबास है एक अच्छे इंसान के लिए। कफा का अदबन लिनफ्सिक इजतनाब मा तुक्रिहु मिन गैरिक, तुम्हारी तरबियत के लिए इतना ही काफी है कि तुम हर उस चीज से दूरी इख्तियार करो जो तुम अपने लिए या दूसरों के लिए पसंद नहीं करते। मुझे ये बताएं कि अगर कोई शख्स झूठ बोलता हो तो आपको अच्छा लगता है? कोई शख्स तोहमत लगाता हो आपको अच्छा लगता है? कोई शख्स दूसरों का माल खाता हो आपको अच्छा लगता है? कोई शख्स दूसरों के हक में जुल्म करता हो, ज्यादती करता हो आपको अच्छा लगता है? कोई शख्स जबान का गंदा हो आपको अच्छा लगता है? कोई शख्स लिबास के हवाले से इंतहाई गंदा रहता हो आपको अच्छा लगता है? कोई शख्स अपने रवैये और अखलाक के हवाले से इंतहाई बद अखलाक हो आपको अच्छा लगता है? नहीं। क्यों? फितरत इंसानी के मुताबिक ये तमाम की तमाम चीजें नेगेटिव हैं। अदब किसका नाम है? उन तमाम नेगेटिव खुसूसियात से इज्तनाब करना जो दूसरों में अगर नजर आए तो आपको अच्छा नहीं लगता। अगर दूसरों में नजर आए और आपको अच्छा ना लगे तो इसका मतलब है आप में बतरीके ओला उन खराबियों और उन बुराइयों को नहीं होना चाहिए। इसलिए हजरत अली इब्ने अबी तालिब ने एक जुमला इरशाद फरमाया और बड़ा ही कीमती और हकीमाना जुमला है बाबे इल्मे नबी का। फरमाया कि जो शख्स दूसरों को सिखाना चाहता है, मन नसब नफसहु लिन्नासी इमामन, जो शख्स दूसरों का रहनुमा, दूसरों का मुरब्बी, दूसरों का उस्ताद और दूसरों का पेशवा बनना चाहता है, उसके लिए लाजम है कि फलयब्दा बितअदीबी नफ्सही क़ब्ला तालीम गैरह, उसको चाहिए कि वो पहले अपने आप को अदब सिखाए, पहले अपने आप को आदाब सिखाए, पहले अपने आप को आरास्ता करे अखलाक़े खुदावंदी से, पहले अपने आप को पाकीज़गियों और अच्छाइयों से मुतखल्लिक करे, उसके आज़ा व जवारे से अच्छाइयां फूटें, उसके बाद फिर वो दूसरों की हिदायत के लिए कदम उठाए। आज के हमारे माशरे में क्यों अखलाक इन्हितात का शिकार है? इसलिए कि अखलाक की तरवीज करने वाले खुद इन्हितात का शिकार हैं। आज के माशरे में क्यों अदब और अखलाक नापेद है और बुराइयां जोरों पर हैं? इसलिए कि जिनके जिम्मे अदब और अखलाक की तरवीज थी वो खुद बद अखलाक भी हैं और वो खुद अदब से आरी भी हैं, वो खुद इल्म और मारिफत से आरी भी हैं। फाकिदुश्शै, जो शख्स खुद महरूम हो वो किसी और को अता नहीं कर सकता। तो जिनके अंदर खुद अखलाक ना हो, जिनके अंदर खुद अदब ना हो, जिनके अंदर खुद इरफान ना हो, जिनके अंदर खुद मारिफत ना हो, जिनके अंदर खुद दर्द न हो, वो दूसरों को दर्द कैसे दे सकते हैं, अखलाक कैसे दे सकते हैं, इरफान कैसे दे सकते हैं, मारिफत कैसे दे सकते हैं, अखलाक की तरवीज कैसे कर सकते हैं? यही वजह है कि जबानों में तासीर खत्म हो गई है। यही वजह है कि जो गुफ्तगू की जाती है उसका असर नहीं होता। रमजान मुबारक दोबारा से अपनी तरफ लौटने का वक्त है, अपने उस असल की तरफ बरगश्त और वापसी का, और इस मौके पर हमें यह काम जरूर करना चाहिए ताकि हम जब रमजान मुबारक से बाहर निकलें तो रमजान की बरकतों के नतीजे में एक अच्छे और पाकीजा इंसान बनकर बाहर निकल सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।